नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणीप्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चाद्देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी किसी माला में छींटियां भी दे देती है, पता नहीं किस माला में है। ये सत्संगों की नहीं है, कीड़े भी फूल का सम कर तुमको भगवान के गर्दन में पहुंच जाए। भगवान के स्पिरिचुअल होने में कोई फिर में कोई काट नहीं सकते, सभी रहते थे नहीं कर। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णः कमलपत्राक्षः पुण्यश्रवणकीर्तनः स्तूयमानोऽनुगैर्गोपैः साग्रजो व्रजमाव्रज। तं गोरजस्फुरितकुन्तलबद्धवरः वन्या प्रसूनरुचिरेक्षण चारुहासम् वेणुं क्वान्तमनुगैरनुगीतकीर्तिः। वेणुं क्वान्तमनुगैरनुगीतकीर्तिः। गोप्यो दिदृक्षित दृशोभ्यगमन समेतः पित्वा मुकुंद मुख शारदमक्षिभृङ्गैः पापं जहुर्विरहजं व्रजजोषितहुनि। तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठां सभीरहास विनयं जगतांग मोक्षं।
वन्याप्रसूनरुचिरेक्षणचारुहासम् दृक्षित दृश अभ्यगमन समेता पीत्वा मुकुंद मुख सारघमक्षिभृङ्गै पापं जहु विरहजं व्रज जोषितमे तत्सकृतिं समधिगाम्य विवेश गोषम् सव्रीडहास विनयं यदपाङ्गमोक्षम्
कृष्णः परमानंद घन परमाकर्षक परब्रह्म कमल पत्राक्ष कमल के पत्ते के समान जिनकी सुंदर आंखें पुण्य श्रम कीर्तन जिनका श्रवण और कीर्तन पवित्र करने वाला वे स्तूयमान अनुगई गोपे अपने सखा गोपो के द्वारा जिनकी कीर्ति का गान हो रहा है और उन सखाओं के साथ तथा साग्रज अग्रज के साथ श्री बलराम जी के साथ ब्रजान ब्रज आ ब्रजक आ रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की वन विहार लीला की कथा कहकर अब वन से ब्रज की तरफ प्रत्यावर्तन करने की लीला का वर्णन कर रहे हैं। ब्रज में माँ यशोदा नंद महाराज और बड़े बड़े गोप तथा श्री गोपियाँ भगवान के विरह में झुलसे रहते एक एक पल एक एक क्षण गोपियों के लिए कोटि कोटि युग जैसा दिखता है और श्री कृष्ण बन में रहते हैं निरंतर कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज तो पहला दिन है धेनुवध की लीला दूसरे दिन की है लेकिन वहाँ से उसका मिलान कीजिए जब श्री कृष्ण पशुपाल सम्मत होकर के जाते हैं गाय चराने के लिए और गोचारण करते करते वे अनेक क्रीड़ा करते हैं और वृक्षों के भावों के मयूर के धरणियों के और कोकिल के सेवाओं को देख करके उनका अभिनंदन करते हैं और अंत में पृथ्वी तृण बिरु ध्रुमलता और पहाड़ नदियाँ इन सबकी बहुत प्रशंसा करते हैं। श्री बलराम से कहते हैं कि हे देव आपके चरणों के स्पर्श से मैं पृथ्वी तथा ध्रुम तृण और बिरु धन्य और आपके नख के स्पर्श से लताएं और वृक्ष धन्य तथा आपकी स्नेहपूर्ण चितवन से नदी पहाड़ ख मृग ये सब धन्य। इस तरह वृंदावन वासियों की वृक्ष और हरण आदि की भौरे आदि की प्रशंसा करते हुए भगवान प्रतिदिन विहार करते हैं तो प्रथम दिन की लीला तो यहाँ कह रहे हैं। कृष्ण पहले बछड़ा चराते थे इसलिए जल्दी आ जाते थे घर पर गौओं के आने के बहुत पहले ही बछड़े आ जाते थे वह तो दुख रहता ही था श्री गोपी जनों को लेकिन आज तो उनका दुख बहुत बढ़ गया था कृष्ण के विरह में देर करके आ रहे शाम के समय श्री सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले भगवान का नाम बोल कृष्ण है, कृष्ण आ रहे हैं सखाओं के साथ और श्री बलराम जी के साथ। यह लीला शाही लीला कही जाती है ब्रज में। शाम के समय श्री भगवान वन से लौटते हैं तो उनके विरह में दिन भर खिन्न ब्रजवासी बहुत सुखी होते हैं, विशेष करके गोपियां यशोदा इत्यादि। और सवेरे जब वो जाते हैं तो उसी समय दुख चालू हो जाता है, जब वन में जाते हैं तो दुख चालू हो जाता है। गोपियों के लिए भगवान इतना प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं कि किसी भी वस्तु से उतना नहीं दिया जा सकता, किसी व्यक्ति से। जैसे मछली का प्रेम है जल से, जल के बिना जी नहीं सकते। लेकिन यह उपमान गोपियों के साथ नहीं दिया जा सकता, जितना मछली का प्रेम जल से है, जल के बिना नहीं दे सकते, उससे अनंत कोटि गुना गोपियों का प्रेम भगवान के साथ। जो जी लेती हैं विरह में तो यह और शीघ्र प्रेम का लक्षण। मुसलमान तो जल से विलुप्त होकर के मर जाती हैं, जल की चिंता नहीं करती हैं कि गंगा हो जाता है, वो मर जाती है। लेकिन इतना है कि जल के वियोग में मुसलमान मर जाते हैं। पर गोपियाँ श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करती हैं, उनको देखने के लिए तड़पती रहती है, एक एक क्षण दिन जैसा दिखता है। तो यहाँ पर ब्रजवासियों के लिए आनंद की बात है, वनवासियों को तो सुख दिए दिन भर और ब्रजवासियों के लिए सुख का समय है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की छवि को देख कर सबसे पहले कृष्ण का कहते हैं। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ होता है शास्त्र के अनुसार कृषि भूवाचक शब्द अनुच्छेद निवृत्ति वाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यादि होते। कहा गया है कि कृषि का अर्थ होता है भूमि, कृषि भूमि भूवाचक, और का अर्थ है आनंद निवृत्ति। तयो वैक्यम इन दोनों को मिला करके कृष्ण शब्द बनता है। तो कृष्ण आनंद की एक आधार है, आनंद में वही आनंद है और आनंद के स्वयं आधार में भूमि भी है, तो उनसे ही सारा आनंद निकलता है। जैसे भूमि से कई पदार्थ उत्पन्न होते हैं, कृषि करने पर कई पेड़ पौधे और कई पर्व, इस तरह से कृष्ण से आनंद निकलता है। कोई भी आनंद सच्चा दिव्य स्पिरिचुअल आनंद है, सुख है, वो भगवान कृष्ण से निकलता है। और आनंद वास्तविक वही है, वास्तविक रस, वास्तविक आनंद श्री कृष्ण। तो परम पुरुष को, पर ब्रह्म को कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण ही परमानंद घन है और किसी को भी कोई भी सुख मिलता है सब सुख के आधार वही, और परम आकर्षक, परम सुंदर कृष्ण शब्द से ये बात कही जा रही है। परम आनंद घन कमल पत्राक्ष, इसके द्वारा श्री कृष्ण की सुंदरता का निरूपण श्री देव गोस्वामी कर रहे हैं। कमल पत्राक्ष, कमल पत्र, अक्ष का अर्थ आंख, कमल पत्र से भी कई गुना सुंदर श्री कृष्ण की आंखें हैं। इनको कमल रंग कहते हैं, पद्म रंग। यहाँ कमल पत्राक्ष, कमल का पत्ता जो नया नया होता है उसकी पंखुड़ियां जो भीतर रहती हैं, इसके समान श्री कृष्ण की आंखें सुगंधित हैं, सुंदर हैं और शीतल हैं। जिस पर ये देख लेते हैं उसके जन्म जन्म की जलन समाप्त हो जाती है। कमल बहुत शीतल होता है। भगवान श्री कृष्ण किसी पर देख लें तो वह सुशीतल हो जाता है, उसकी जलन मिट जाती है, परम सुखी हो जाता है, उसका अर्थ ये है। और श्री कृष्ण के सर्वांग से सुगंध निकलता रहता है, आंखों से भी एक कमल जैसे गंध निकलते हैं, कई कमल से उतना देने के कई कारण, कमल का प्रयास, कमल सुशीतल होता है, सुंदर होता है और सुगंधित होता है, उसका स्पर्श भी बहुत कोमल होता है। इस तरह भगवान की आंखें हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, यदि कमल नयन कही है तो इसका अर्थ होता है भगवान विष्णु कृष्ण। नाम रखने की जरूरत नहीं, किसी सभा में देवताओं के अगर भगवान आए हैं कहीं पर तो कहा जाएगा ऐसे भगवान शिव के लिए कहा जाता त्रिनेत्र जी आए थे, उनके तीन नेत्र भगवान शिव के, लेकिन उनको कमल नयन नहीं कहते, कमल नयन जी आए थे। अगर भगवान आए सभा में तो सीधा कहा जाता है कमल नयन आए, तो कमल नयन का पूरे ब्रह्मांड के देवता दानव मनु सब जानते हैं, इस पृथ्वी पर मूढ़ मनुष्य नहीं जानते हैं, देवता सब जानते हैं कमल नयन का क्या है। परम सुंदर भगवान विष्णु जो श्री कृष्ण के ही अंश विलास है, श्री कृष्ण की आंखें कितनी सुंदर हैं। सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के समग्र सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं एक शब्द द्वारा, कमल का प्रकाश विलक्षण है। आंखों की सुंदरता का वर्णन करके सर्वांग सुंदरता का निरूपण कर दिया है, और महिमा कितना पवित्र है, कितना उज्ज्वल है भगवान, उनके बारे में कोई सुने और बोले वह परम पावन हो जाता है, जगत को कर सकता है, न भक्ति भक्तो भुवनम प्रभाति। भगवान ने भागवत में कहा है कि मेरे भक्ति से युक्त मेरा भक्त भुवनम प्रभाति संपूर्ण विश्व को पवित्र कर देता है, कैसे मेरी गाथा गा करके, मेरा कीर्तन करके, मेरी कथा कह करके सारे जगत को कर देता है, और वो गदगद हो जाता है कीर्तन करके मेरे बारे में बोल कर गदगद हो जाता है, आंखों से आंसू बहता है। ऐसा भक्त जब नाचता है और मेरा गीत गाता है तो वह उस पृथ्वी को, पृथ्वी पर स्थित सारे लोगों को, बल्कि सारे धूमन को पवित्र, धूमन को ना भगवान कृष्ण परम पवित्र है। इस संसार में लोग अज्ञान के कारण भगवान श्री कृष्ण पर बहुत दोषारोप करते हैं, ये ज्ञान नहीं है, वे जानते हैं कि श्री कृष्ण एक लंपट पुरुष है, बहुत स्त्रियों के चक्कर में रहता है, वो ऐसा सोचते हैं, मूर्ख हैं, उनको उन गधों को कोई पता नहीं है, सुने नहीं भागवत अच्छा से, शास्त्र श्रवण नहीं किए, तो इसलिए उनको पता नहीं है। सबसे पवित्र वस्तु भगवान, जिसकी लीला को, जिसके नाम को कोई महापापी भी सुने तो वह परम पावन हो जाता है, तो स्वयं भगवान कैसे दोषपूर्ण हो सकते हैं, पवित्र कैसे हो सकते हैं, विचारने की बात। जिनका नाम कोटि कोटि जीवों को तार देता है, नाम कोटि खलकुमति से भरा है, जिसका नाम बोलने से या कान में पढ़ने से जीव के सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, वो भगवान कैसे अशुद्ध हो सकते हैं, कैसे दोष की भावना में की जा सकती है। करने वाला आदमी वास्तव में बहुत पापी है, अज्ञ है, जड़ है, जो भगवान को कोई अपवित्र कहता है, और यही कहते हैं कि श्री कृष्ण बहुत पॉलिटिक्स जानता है, झगड़ा लगा लगा कर कुरुक्षेत्र का युद्ध करा दिया, युधिष्ठिर को अपना चेला बना करके उसको आधार पर बैठा दिया, युधिष्ठिर खुद उसका सेवक रहता है, अंततः कृष्ण बहुत लोलू है, राज्य का लोलू, तो कितनी मूर्खता की बात करती है। कंस का वध भगवान ने किया था, वो चाहते थे मथुरा का राज्य ग्रहण करते, लेकिन भगवान ने राज्य स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उग्रसेन महाराज को राज्य दे दिया, और उग्रसेन महाराज के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होते थे, कहते थे हे देव आज क्या करना है हमको, आज दीजिए वर्ष दूसरी दे, ऐसे पेपर लिखते हैं स्मृति के लिए आज्ञा क्या करना। भगवान महाराज उग्रसेन से प्रणाम करके पूछते थे कि हे देव आया क्या आज्ञा है, कौन सा काम किया गया। देव निधार होती वो उद्धव जी विदुर जी से कह रहे हैं कि हम सेवकों को बहुत गुलामी होती है, जब हम याद करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, जगन्नाथ हैं और परब्रह्म हैं, सब कृष्ण स्वामी हैं, वे उग्रसेन महाराज के सामने एक सेवक की तरह खड़ा होकर के आज्ञा मांगते हैं, ये आज्ञा दीजिए मैं क्या करूँ, कहाँ है राज्य की वो लोकता, मैंने विचार किया, वो चाहते तो राजा बन सकते। ये युधिष्ठिर महाराज हम जीत गए तो श्री कृष्ण राज्य पर असीम हो सकते, कहीं भी भगवान का स्वभाव है किसी के परंपरागत राज्य पर दखल नहीं करते। जैसे भगवान श्री राम ने बाली का वध किया तो किष्किंधा का राज्य भगवान श्री राम का था, लेकिन ये कभी नहीं स्वीकार किए, वो तो अपना ही राज्य छोड़कर आए थे, दूसरे का राज्य क्यों है, अपने पिता के धर्म की रक्षा के लिए 14 वर्ष तक उन्होंने वनवासी जीवन स्वीकार किया, कभी गांव में नहीं गए, कभी शहर में नहीं गए और कभी पकाया हुआ भोजन नहीं खाया, अन्न या दूध गर्म करके तोड़ दे, कभी नहीं, कंद मूल फल खाते थे 14 साल तक और जमीन पर सोए तपस्वी का भैंस बना कर रहते थे, कभी कम भी नहीं किए, तेल नहीं लगाए, जटा बनाए, तापस देश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बना। भगवान ने पूरा पूरा धर्म का पालन किया, कोई भी बहाना नहीं किया कि जरूरी है वन में आपके तकलीफ में रहे, कुछ भी भूमि पर सोना, बलकल वस्त्र पहनना, पेड़ की छाल केला की छाल पहन लेते थे या हरण की छाल अगर मिलती थी तो उसको पहनते थे करना पड़ा, और सोते थे जमीन पर। गांव में गए ही नहीं थे, लाख फैसिलिटी है, कभी नहीं गए, और गांव में शहर में है क्या, कोई भक्ति थोड़े है, क्या अंग्रेज तृप्ति का सामान मिलता है कुछ देखकर, कहीं भी बाजार में गए आत्मा के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, केवल देह के लिए मिल रहा है, जूता टोपी कोट कमीज खाने की चीज पहनने की चीज, खूब आपको संसार के बाजार में बिक रहे हैं, किसके लिए, देह के लिए, आत्मा के लिए वृंदावन वस्तुएं मिलती है, जप माला मिलती है, झोली मिलती है, गोपी चंदन तिलक मिलता है और भगवान की याद दिलाने वाला वस्तु मिलता है, प्रसाद मिलता है, वहाँ आत्मा के लिए वहाँ पर खुल जाओ, इधर सब दर्दी के लिए सही है। जैसे किसी प्रभुपाद कहते हैं जैसे किसी पिंजरे में केज में किसी पक्षी को रख दिया जाए और पिंजरा को खूब सजाया जाए, रेशमी कपड़ा बढ़ाए, पिंजरे को सोने का पालिश करा दीजिए और खूब रोज रोज पालिश दीजिए, पिंजरे को सजाइए और पक्षी जो चें चें करके रो रहा है उसको एक दाना भी नहीं दे रहा है कोई व्यक्ति, तो क्या पिंजरे के सजाने से पक्षी सुखी होगा, नहीं, कितना भी पिंजरे को सजाया जाए लेकिन इसमें रहा होगा पक्षी मर जाएगा, सुखी नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम लोग वास्तव में इस पिंजरे में हैं, ली गई है सुगना पिंजरा बात भोजपुरी में गाते हैं का कर दो राई राई पाई पाई जोड़ के उड़ गई है सुगना पिंजरा बात छो, ये राई राई पाई पाई के पैसा जोड़ कर क्या करोगे, एक दिन ये जीव की सुगा उड़ जाएगा पिंजरा को छोड़ के, और इसको यही छोड़ दिया जाएगा और पिंजरा को शमशान में जला कर राख कर दिया जाए। देह के लिए इतना सब चीज लाना क्या आत्मा को सुख देगा, नंदीदेश में खूब महंगा महंगा पदार्थ डाल रहे खा रहे हैं, महंगा कपड़ा पहन रहे हैं, खूब इसमें तेल उतर मालिश चल रहा है। भगवत में कहा गया है कि यदि तुम्हारे तेल लगा रहे हो, बहुत चंदन लगा रहे हो और इसको बहुत कीमती कपड़ा पहन रहे हो, तो जानते हो किसका स्वागत कर रहे हो? कुत्ते और सियार के भोजन को मालिश किया रहा है। भगवत में कहा गया स्वस्वीकार भक्ष कुत्ते इसी आशा में है कि इतने गिरेगा तुम खाएंगे, बेचारे गिद्ध तो है ही नहीं और लेकिन मार दिए कसाई सब मांस खाते हैं पशुओं का, इसलिए गिद्ध बेचारे भूखे कहाँ तुम चले गए दिखाया नहीं देते। इतना मानो वस्तु पापी जीव है दूसरे का भोजन मार करके खा। आप लोग में से बहुत लोग देखते होंगे देखे होंगे कि कोई जीव यदि कोई पशु स्वाभाविक मृत्यु से मरता है तो अपने आप बिना निमंत्रण के गिद्ध जुट जाते हैं, कहीं कोई खबर नहीं देता है। यह प्रकृति की व्यवस्था है कि वे अपने आप जुट जाते हैं। जब पशु जीवित रहता है तब नहीं आते, जीवित अवस्था में तो सब कसाई खाते हैं। पापी जीव इस संसार में सबसे पापी सबसे अधम मनुष्य है गाय का मांस खाने वाले, सबसे अधम। वो चाहे कुछ भी नाम ले रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। तो जो गाय भैंस कोई पशु गाय स्वाभाविक मृत्यु से मरता है तो अपने आप दूसरे जीव खाने के लिए आते हैं। लोग कहते हैं कि ये पशु बढ़ जाएंगे, बकरे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, जो बढ़ जाएंगे तक पूरे शहर में फैल जाएंगे, उनकी मृत्यु नहीं होती है और इसलिए इनको मार मार करके खा करके कम कर दो खत्म कर दो। ये विचार है मनुष्यों का। ऐसे ऐसे जीव मनुष्य कहलाने के दुख नहीं हो सकते। यह सत्य है अपने को भले में बहुत अच्छा कहें लेकिन मनुष्य का दर्जा उन्हें नहीं दिया जा सकता है। पशु हैं जिन पशुओं को खाते हैं, पशु भी अच्छे हैं। कोई बाघ सिंह कितना पशु मारेगा तो मारेगा पेट भर जाएगा, वो कसाई खाना थोड़े चलाएगा, चलाते हर्ष नहीं चलाएगा सिंह और बाघ, वो लोग अच्छे हैं। हमें यह कह रहा था कि देह को सजाने के लिए इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। देह के लिए खूब अच्छा अच्छा घर एसी रूम, देह के लिए आत्मा को तो ठंडा लगता है नहीं, न आत्मा को गर्म लग सकती है न आग जला सकती है, डायरेक्ट आग में रख दिया जाए नहीं जला और न हवा सुखा सकती है, न पानी गीला कर सकते हैं, न उसको काट सकते हैं। भगवान गीता में बार बार कहते एक बार उन्होंने कह दिया नैनम छिंदन के शस्त्र हैं नैनम दहत पावक न चैनम क्रेदन कहते न सोसैती मारक। फिर कहते हैं अदाहियो यम अशुस्तो अयम अच्छेद्य अयम, इस तरह से कहते हैं ये अच्छेद्य है, शस्त्र इसको नहीं काट सकता, ये अशुस्त है हवा इसको सुखा नहीं सकता, अक्लेद्य पानी इसको गीला नहीं कर सकता, इस तरह से भगवान बात करते हैं। और दाहियो इसको हम जला नहीं सकता, एक ही बात कई बार कह रहे हैं कि मनुष्य समाज पूरा पूरा समझ गया कि आत्मा में और देह में बहुत भेद है, कोई टच ही नहीं है आत्मा देह और देह को ही आत्मा मान करके इसका जो लोग लालन करते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि ये कुत्ता और सियार का भोजन का लालन किया जा रहा है। समाना जो कोई भोजन है कुत्ते के लिए खूब बढ़िया पैकेज बनाया है, आखिर कुत्ता ही खाएगा, तो पैकेज नहीं बनाया जा रहा है असल तो पूरा देह वो लोग खा रहे हैं, या अग्नि की बत्तियों में जल पर स्वाहा हो जाए। हिंदुओं का ज्यादातर शरीर अग्नि देवता है खाते हैं, दूसरे लोगों का शरीर मिट्टी में जाकर कीड़ा हो जाता है, ये समझते हैं कुछ लोग कि ये देह ही आत्मा है, इसीलिए मरने पर और सजा जा करके और जमीन के अंदर जाते हैं, अच्छा सा घर बनाते हैं कि यहाँ विश्राम करेंगे और अगले उठेंगे। कब उठेंगे तो डेट नहीं है, कुछ पता नहीं है। अरे जीव गया दूसरे दिन में और ये देह गया कीड़ा बनने के लिए, जरा कब्र को उखाड़ करके देखिए कि क्या हुआ शरीर, तो लौटा है तो 14-15 वर्ष हो गया कोई लौटा है, तो निर्णय हुआ किसी किसी का 2000 वर्ष हो गया लौटे कोई, कब से कोई जिया है न्यूज पेपर में कभी आया कि कोई कब से निकाल कर भाग लाए हैं, कब में जाने का रोज वर्णन है, रोज वर्णन जाने का कब मरने का, लेकिन कोई कोई उठ करके भाग गया कब से किसी न्यूज पेपर में या टीवी में कभी आया समाचार, कभी नहीं आ सकता। तो गया शरीर कीड़ा बन गया, सदा मुख पान के बीड़े उन्हीं को खा गए कीड़े जिनके मुख में पान हमेशा रहता था चलाते थे, उनको पान की तरह एक दिन कीड़े खा जाएंगे, पान को कचड़ रहे फिर शरीर को खा रहे कीड़े को, शरीर ही सब कीड़ा हो जाता है, कीड़ा में कीट हो जाता है, वो कीट मिल करके शरीर को खा रहा, शरीर से कीड़े उत्पन्न होते हैं और कीड़े शरीर को खा रहे। या तो शरीर कृमि बनता है गाड़ने पर सड़ जाने पर और जलाने पर भस्म हो जाता है, अथवा कोई जीव खा जाए सिया कुत्ता या गिर तो उनका मल बन जाता है, शरीर की गति निश्चित है, इन तीन में से एक गति होगी निश्चित है, और इसी शरीर को इतना सजा आता है। ये कैसे इस दिव्य प्रसंग में बात आ गई, भगवान की लीला में ये वैराग्य की बात कैसे आ गई, और कमल में भगवान का सब कुछ दिव्य है, कमल नैन शब्द के द्वारा उनके समग्र सौंदर्य का वर्णन है, नहीं भगवान के पवित्रता का वर्णन है, जिनका श्रवण और कीर्तन पापी से पापी व्यक्ति को परम पावन बना देता है, उन भगवान में दोष की भावना करना कि अपने दोष का पंचायत है, वास्तव में अपनी अज्ञता का पंचायत, जिनका नाम विश्व को पवित्र कर सकता है, ऐसे भगवान देव बता रहे हैं स्तूल मानव उदर गोपय सगर उदर नाग, तो श्री कृष्ण लौट रहे आनंद घन निर्दोष भगवान, खास करके मैं उन लीलाओं को कहना चाहता था संकेत का बनाऊ जो भगवान में दोष निकालते हैं कि गोपियों के साथ नाचते हैं जाते हैं और महाभारत कुरुक्षेत्र के पॉलिटिक्स में भाग लिए ये लिए वो ये कृष्ण लोभी है, ऐसा इसलिए कहते हैं कृष्ण ने राजाओं का बहुत वध किया, प्रायः उनके लीला में आप देखेंगे राजाओं का वध करते थे, राजा अगर ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएंगे, इसलिए भगवान ने राजाओं को ठीक किया, पहले ठीक क्या किया, बदमाशों को मार मार करके बैठे यहाँ राजा उत्पात करते थे, जब 11 वर्ष के थे तो कौन सा वध किया, राजा था दर्शन का दमाद था बहुत खबर था, जो अपने बहन के पुत्रों को मार सकता है जन्म लेते हैं वह कितना खल था कितना बदमाश था क्या कहना है, लेकिन उन लोगों से बदमाश ज्यादा नहीं था जो लोग अपने गर्भ में ही अपने बच्चे को मार देते, ये ज्यादा पापी था, ये कहकर कि बहुत भार हो रहा है कैसे पालन होगा क्या होगा, तो तुम हवा दे रहे हो क्या सकते हो, पानी तुम पिला रहे हो, पृथ्वी तुम बनाए हो, क्यों इतनी चिंता करते हो, जो व्यक्ति गर्भ में बच्चा दे रहा है वो पालन करेगा, ये नियम है प्रकृति, लेकिन अपने बच्चे की हत्या करना यह बहुत बड़ा पाप है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण निर्दोष मंदिर पवित्रता के मूर्तिमान स्वरूप है, उनका नाम लेना चाहिए, खेती जाना चाहिए, उनसे पाप उसी तरह से संभव नहीं है जैसे सूर्य के द्वारा अंधकार का प्रसारण संभव है। जहाँ सूर्य है वहाँ ब्राइटनेस, प्रकाश प्रकाश प्रकाश, जहाँ कृष्ण है वहाँ माया का प्रभाव नहीं है, कोई दोष नहीं है, समस्त दोषों से विवर्जित और समस्त सद्गुणों से मंडित भगवान श्री कृष्ण। और संसार के जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए सब यही बात कहते हैं, बोलते हैं गीता में कि पर ब्रह्म परम धाम पवित्र परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य आदि देव अजम विभुम आहुष्वा विषय सर्वे दर्शी नारस्त था अशितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रह्मेश्वर। आपके विषय में जितने भी ऋषि हैं जैसे श्री नारद जी, भगवान व्यास देव, असित देव, ये सब श्रेष्ठ कोटि के ऋषि हैं जो सर्वज्ञ हैं, ये सभी कहते हैं आहु त्वां विषय सर्व, सारे ऋषि आपके विषय में यही कहते, क्या कहते हैं, पर ब्रह्म परम धाम पवित्र परम, ये सभी कहते हैं अब शाश्वत पुरुष हैं, दिव्य हैं, अज हैं, विभु हैं, जितने भी ऋषि हैं हमने सुना है डायरेक्ट उनके मुख से विश्वास सूर्य सभा में और ब्रह्मों को, सारे ऋषि यही कहते हैं कि आप परम पवित्र हैं, पर ब्रह्म हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, अविनाशी पुरुष हैं और विभु हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, सबके हृदय में व्याप्त हैं, सबकी बात जानते हैं। जितने ऋषि हैं जो फर्स्ट क्लास के बुद्धि वाले हैं वे लोग ऐसा कहते हैं और डर माइंड है मूर्ख लोग कहते हैं कृष्ण ऐसे बसी है ये बसी है ये बसी, ये विचार करते हैं, ये नहीं सोचते कि दूसरे लोग क्या कहते हैं कृष्ण के विषय में। इन अज्ञ लोगों को सीखना चाहिए बड़ा व्यक्ति कृष्ण के विषय में क्या बोल रहा है, भगवान विद्यास जब क्या कह रहे हैं कृष्ण को, श्री नारद जी क्या कह रहे हैं, देवल ऋषि असित ऋषि वशिष्ठ ऋषि क्या कहते हैं। भगवत में लिखा गया है वामन देव के प्रसंग में वशिष्ठ देव ने, वशिष्ठ जी ने भगवान के विषय में ऐसा कहा है कि संभव है इस पृथ्वी को धूल बना करके इसको गिन करके खत्म कर दिया जाए, लाखों लाखों लोग करोड़ों लोग लग करोड़ों सरस्वती करोड़ों शेषनाथ और करोड़ों बृहस्पति जी और शुक्राचार्य जितने कंप्यूटर लेकर आए हैं, हो सकता है कि एक दिन गिनते गिनते पृथ्वी के धूल को गिन सकते, ये असंभव है, लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं कि हो सकता है पृथ्वी के धूल को गिना जा सकता है, जल के कणों को हिम कणों को गिना जा सकता है और सब कुछ गिना जा सकता है, तारे गिने जा सकते हैं, हिमकण गिने जा सकते हैं, किसी के धूल गिने जा सकते हैं, लेकिन विष्णु के गुणों को गिन पाना ये असंभव है, असंभव है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान वशिष्ठ ने ऐसा कहा, वो उदाहरण देते हैं, भगवान ऋषि वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा, एक प्रमाण है, अथॉरिटी है वशिष्ठ जी, भगवान व्यास ये जो कहे हैं शास्त्र में उसको अवकल स्वीकार करना चाहिए, कृष्ण परम पावन है। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूर्ण श्रवण के ऊपर कृष्ण का श्रवण, उनके गुण का नाम का कोई श्रवण करे और गान करे वर्णन करे तो उसको भगवान का श्रवण के ऊपर परम पावन बना देता है। ऐसे श्री कृष्ण जो परम सुंदर है, आनंद घन है, परम पवित्र है, वे लौट रहे हैं वन से ब्रज की ओर, अपने गांव की ओर, स्तुयमान अनुग्रह गोप अपने अनुगामी गोपों के द्वारा सखाओं के द्वारा उनकी स्तुति हो रही है, गीत गा रहे हैं, तत्कालिक शोभा की बात गा रहे हैं, कृष्ण का मुख कैसा है, चंद्रमा सभी अभक सुंदर ऐसे गा रहे हैं। कोई कोई गोप तो कृष्ण के आगे चलते हैं लेकिन मुख कृष्ण के तरफ करके चलते हैं, देखते रहते हैं, गाते रहते हैं। तत्काल भगवान के सौंदर्य का या बन जो लीला किए हैं उसका गान करते हैं, सदा स्तुति करते रहते हैं, भगवान को गीत गाते रहते हैं। ये भूख सब लौट रहे थे और श्री बलराम साग्रह सग्रह प्रधान रूप से श्री कृष्ण कहें वर्णन किया जा रहा है, लेकिन भगवान की सहाय सहायक के रूप में सग्रह साग्रह श्री बलराम जी हैं, सब हम लोग गा रहे हैं और अपनी सखाओं के गीत पर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। खूब दक्ष है, उनके गीत में सहायता करने के लिए, उनका नमरों बढ़ाने के लिए भगवान बांसुरी बजाया। बहुत से कवियों ने महात्माओं ने भगवान के संध्या लीला का वर्णन किया है, गाय चरा करके जो भगवान रखते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि माँ की याद आती है, गोपियों की याद आती है और गौरों को बचने की याद आती है। भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब जल्दी जल्दी चल रहे हैं। जल्दी जल्दी चलने से गौरों को खुद से रद हो रही है, धूली हो रही है। श्री गोपियों ने श्री कृष्ण को देखा कैसा स्वरूप है भगवान का, इसका वर्णन सुखदेव जी कहते हैं, तम गो वजस छृत कुंतल बद्ध गर्भ वन्य प्रसन्न रुचि क्षण चार भाषण देवन परम मनगर अनुदीप कीर्ति गोप्यो विदीक्षित विषय अभ्यगम समय। श्री कृष्ण के बांसुरी की आवाज को सुनकर गोपियां अपने अपने घरों से निकल करके आ गई, अथवा पहले से ही अपने अपने घरों से निकल करके चौराहे पर अथवा जो पथ वन से व्रज की ओर आता था उस पथ में और दूर तक जा करके श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही। असल व्रज में नियम की इतनी कड़ाई नहीं थी, लेकिन कुछ गोपियों पर कड़ाई थी कि घर से बाहर ना जाए, नहीं जाए, किसी पर पुरुष को न देखे, क्योंकि श्री कृष्ण तो पर पुरुष है ही नहीं, सबके आत्मा है। श्री कृष्ण को देखने के लिए घर घर से गोपियां निकल आती थी, एक स्थान उन्होंने निश्चित किया था जहाँ श्री कृष्ण को आनंद से देख सके, कुछ सामने आ जाती थी और कुछ अपने भवन के झरोखे से देखती थी, छत से देखती थी। बहुत पहले से ही लोग घर चकचकी लगा देती थी बर की ओर, यह प्रियतम श्याम सुंदर आ रहे हैं, आएंगे आएंगे आएंगे। विदीक्षित दिशा, विदीक्षित दिशाकार थे कि उनकी आंखों में कृष्ण को देखने की अति उत्कंठा थी, अति औत्सुक उत्कंठा थी आंखों में देखने की, आंखें कहीं दूसरी तरफ देख ही नहीं रहे, केवल बल की ओर देख रहे गोपियों की आंख। अब प्रिय परिश्रम सुंदर आएंगे आएंगे आएंगे, इसलिए सबदेव गोस्वामी गोपियों के झुंड में उनके बीच में खड़े होकर के कृष्ण को देख रहे हैं, इस तरह से वर्णन करते हैं। गोपियां श्री कृष्ण को किस तरह से देख रही हैं, सुखदेव गोस्वामी कृष्ण को देख रहे हैं और गोपियों को भी देख रहे हैं, कितनी उत्कंठा है उनके नेत्रों में, विदीक्षित जैसा जिनके आंखों में विदीक्षिता देखने की उत्कट लालसा है उनको विदीक्षित जैसा कहा। इससे सिद्ध हुआ श्री सुखदेव गोस्वामी गोपी जनों के नेत्रों का दर्शन कर रहे हैं, कितनी प्यास है कृष्ण को देखने की। कृष्ण कैसे हैं, कुंतल गोरजस छृत कुंतल बद्धवर, श्री कृष्ण गायन के रज से उनके अलग छृत गोरजोधी श्रुतेषु व्याप्तेषु कुंतलेषु बद्धम गर्भ और वन्य पशु, श्री कृष्ण के अलग कनक अलग है परम सुंदर, लेकिन उन अलकों पर केशों पर धूली छाई गई है। कैसी धूली, गो रज गायों के खुर से उड़ी हुई धूली छाई गई, उससे श्याम सुंदर की और शोभा बढ़ रही है। इसी दूसरे का इस तरह धूल पड़े तो शोभा नहीं देता, भगवान पर सुंदर है कि न सुंदर, सुंदर व्यक्ति कुछ भी पहने तो सुंदर लगेगा। सुंदर व्यक्ति मान लीजिए फटा कुर्ता भी पहना है तब भी वो सुंदर लगता है, और जो सुंदर नहीं है वो आज ही नया तो हम तो उसे कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण पर रज भी बहुत सुंदर लग रहे हैं और रज से भी शोभा बन रही है, लौट रहे हैं वृंदावन से अपने घर ब्रज में। गाय तो खुश है वो ही ब्रज, तो गाय का रज तो ऐसे ही पवित्र होता है, वो काम ब्रज होता है। गाय के रज को लेकर के माला लगाते हैं, गोमूत्र से स्नान किया जाता है, गाय के गोबर का तिलक किया जाता है, बहुत पावन है गाय का सब। भगवान गाय चरा कर लौट रहे हैं, उनके अलकों पर धूली हुई हुई है, इसके द्वारा सागरजा और अपने अनुगामी के साथ चल रहे हैं। इसका मतलब है कि उन लोगों पर भी धूल हुई है, श्री बलराम जी के अलकों पर भी, ऐसी अलकों में श्री कृष्ण बांधे हैं क्या क्या, बर्ध बरह बरह का मोर मयूर पवक मोर मुकुट बांधे बर्ध, तो बहुत भव्य मुकुट दूसरा नहीं है, अपने केशों में खोसे हैं बांधे हैं, किसी चीज से बांध रही हूँ वो पवक को। आजकल बहुत बीहड़ बड़ा बड़ा मुकुट लगा देते हैं भगवान कृष्ण को, बड़ा बड़ा सुंदर नहीं लगता, लेकिन भगवान नारायण को या भगवान राम को विष्णु भगवान को बांधा जाता है, कृष्ण ऐसे नहीं। कृष्ण तो अपना श्रृंगार केवल वन के वस्तुओं से दान मिलने वाली स्वभाव की है उससे करते हैं, बर्ह बांधे हैं और वन में पशु वन में खिलने वाले कृष्ण पुष्प बांधे। इसके साथ ही साथ रुचि रक्षा श्री कृष्ण की चित्तों में बहुत रुचि है, बहुत टेस्टफुल है, बहुत सुंदर बने वो देखते हैं, खासकर तो श्री गोपियों की तरफ उनकी दृष्टि बहुत सुंदर है। चार हासन चरिता तो सुंदर हास हंसी बहुत सुंदर ढंग से हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, दोनों के लिए दो विशेषण सुखदेव स्वामी देते हैं, रुचि इच्छा और चार हासन। रुचि 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 का अर्थ होता है स्वाद, भगवान सोचते हैं जब देखते हैं प्रेम से किसी के तरफ विशेषकर किसी गोपी जनों के तरफ, वो इच्छा देखना रुचि है बहुत सुंदर बहुत सुंदर, और चार हासन बहुत सुंदर हंसी, देखना और हंसना बहुत सुंदर है, किसी के तरफ भी देखते हैं तो भगवान हंसते हुए देखते हैं। माँ यशोदा के पास भी गए तो हंसते हुए गए, क्योंकि चाहते हैं कि माँ को ऐसा ना वो भगवान नहीं हंसूंगा तो माँ समझे जिसको बहुत परिश्रम पड़ा है गया चलाने थक गया, तो भगवान श्री कृष्ण हंस रहे ये सिखा रहे हैं। ऐसे तो श्री यशोदा जी ने लिखा है जब प्रथम दिन गाय चला कर जब कृष्ण आए तो माँ के स्नान में ऐसे चलते हैं लंगड़ करके चलते हैं, गाय बहुत दुख हो गया दुख हो गया, माँ को सुख देने के लिए बोल रहे हैं कृष्ण कि माँ कहे ठीक है तो कल से गाय चलाने मत जाना, कल से गाय चलाने मत जाना, मैं मना करती थी मैं कि क्यों गए, तो माँ को अपना दुख बता बता करके श्री कृष्ण उसको आश्वासन देते हैं, अब नहीं जाएगा बहुत दुख हुआ तो माँ सुखी होगी, लेकिन सवेरा होने के बाद फिर चलो खेल के बहाना कर, तो माँ रात भर खुशी में रहेगी कि अब गाय चलाना नहीं जा रहा है। वो क्या क्या कहते हैं झूठ बोलते हैं, माँ जितने गोप सखा हैं यहाँ तक तो बलराम भी तो मेरा भाई है, ये सता भी हमको गाय चलाना हमसे ही सारी गाय घेरने के लिए भेजते, इसलिए मैं गाय चराने नहीं जाता देखो बहुत दुख रहा है कितना पत्थर गड़ा बहुत कोमल कौर है मेरा गर्म पानी लाओ धो उसमें तेल लगाओ सरसों का श्री कृष्ण ऐसे कहते करो करो बलराम तुमसे गाय घेरवाया, अरे हाँ क्या पता नहीं भगवान ने क्यों उसको मेरा भूत बना दिया, ये बहुत कल्पना करना है। और कहते हैं कि हमको क्या हुआ, हमको बुलाया कन्हैया चलो मेरे साथ एक चीज देखा, हमको ले गया एकांत जंगल में, और जंगल में ले जाकर के काली का हाउ आया है, हाउ आया है, हमको सोचा तो भाग गया, हाउ भयानक जीव है, और कोई गोप सखा को सिखा दिया था, मुझे बाद में पता चला उसमें मैंने गोप को सखा को सिखा दिया कि तुम हाउ जैसा बोलो, तो बलराम जी भाग गए, बलराम जी भागे वो लोग तो छिपे ही थे, कृष्ण को बोलता है देख सकते लोग आनंदित होते थे, और माँ हमको कांत में छोड़ करके भाग गया, और तो मैं यही सोचना कि हर बात तुम उसको खा जाएगा, मैं इतना रोया इतना रोया, हाय रे माँ मेरी दूर है, वो बाबा दूर है, भाई हमको धोखा देकर भाग गया, तो भगवान की कृपा थी तुम्हारी दया कि तुम्हारा स्नेह जिसे मुझे हाल नहीं खाता आया ही नहीं, भगवान की कृपा इतना हमको बुलाया, और तुम यहाँ से मुझे गाय चलाने के लिए भेजे तो कहीं बलराम देख रेख करेगा तुम्हारा, बलराम के संरक्षण में मुझे गाय चलाने के लिए भेजा, इतना ही नहीं मैया किसी किसी दिन कहते प्रतिदिन ऐसा करते थे, अब गाय चलाने नहीं जाना शाम को, लेकिन भोर में है करके चले नहीं जाते सवेरे, एक दिन कहते हैं हमको इतना खिझाया बलराम मैया मुझे दारू बहुत खिझा है, छिड़ा छिड़ाते देव बोल कहा, एक दिन मेरे मित्रों के सामने पूरा कहने लगा कि ये कृष्ण यशोदा का पुत्र नहीं है, नंद बाबा का पुत्र नहीं, क्योंकि ये दोनों गोरे हैं, अरे काला पलटा है, ये इनका पुत्र कैसे है, उनका बेटा हो नहीं सकता है, कृष्ण सुन करके इतना रोते हैं, बहुत दुखित होते हैं, लेकिन भगवान जी ग्वाल कहते हैं गोरे नंद जसोदा गोरे तुमकत श्याम शरीर चुटकी गाय हसत द्वार सब सिखे देते बलवीर, ये बलराम सिखाता है सब कहता है कि ये नंद जसोदा का पुत्र नहीं है, और यह भी कहा कि ये चोर है, हमको चोर कहता है, उसके कारण हमारा विवाह तक नहीं हो पाएगा, तो दुनिया में जाने लोग जाने बलवासी के छोर है तो कौन मेरा विवाह करेगा, इतना तंग करता है, कहा कहूँ यही इसके मारे खेलन हो नहीं जा, इसी गुस्सा के कारण क्रोध के कारण खेलन नहीं जाता, सब यही कहते हैं कि काला आ गया, पता नहीं भगवान ने कहा था कि नंद जसोदा इसको मोर कुछ मूल्य दे कर खरीदे, तो इतने उम्र में उनको पुत्र कैसे हो सकता है, भगवान जी कहते इतने उम्र में पुत्र हो नहीं सकता है, अस्वाभाविक पुत्र बना, और हुआ तो दूसरे का जन्म हुआ और खरीद करके ला दिया, सुन कर कृष्ण इतना क्रोधित होते थे, चलो चलो मैं माँ से बताऊंगा, माँ से कहूंगा, और तुम कहो थे कि उसको घंटे घंटे खिलाना, ये दिन में एक बार भी नहीं खिलाना, सब झूठ बोल रहे, एक बार भी नहीं खिलाया, मैं गाय चलाऊंगा, माँ को सुख देने के लिए सब बोल रहे हैं, माँ को बहुत दुख होता था कि छोटा बच्चा इतना सुकुमार शरीर वाला गाय चढ़ा जाता है, चाहते थे कुछ ना आए शाम को आते थे तो हो गई पा, इतना पैर में दर्द हुआ, गाय भरने में थक गया, ठीक है बेटा कल भी तुम होता है, श्री कृष्ण इस तरह ब्रज में प्रवेश करते हैं, माँ से मिलते हैं, बाबा से मिलते हैं, और श्री गोपियों से बोल रहे हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले गोपियों से भगवान का दृष्टिपात देखा करके होता है, कृष्ण को देख करके अपार आनंद में मगन हो जाती है, कृष्ण को देखने पर गोपियों की जब पलकें देती थी तो पलक बनाने वाला ब्रह्मा को खूब गाली देती थी। जो भी सृष्टि नहीं जाना चाहते, जो भी सृष्टि कर रहे, जब कृष्ण को ब्रज में जन्म दिया और हम लोगों को जन्म दिया, तो इसको चाहिए था कि हम लोगों को कोटि कोटि लाख दे कृष्ण को देखने के लिए, सब बिना पलक के। गलती क्या किया ब्रह्मा, एक तो दो आंख बनाया और दोनों का ढक्कन बना दिया, पलक गिरती रहती है, दर्शन में बाधा करती है। इसको चौगुना दिमाग होना चाहिए, तो चार मस्तक है लेकिन बिल्कुल चौपट है ब्रह्मा, इसको कोई बनाने की कला नहीं है। और हमने सुना है कि इंद्र को 1000 आंख बनाया, 1000 आंख बनाया क्या करने के लिए, वहां तो कृष्ण है ना, जहाँ कृष्ण नहीं है वहां पर 1000 आंख बना रहा है, जहाँ कृष्ण है तो देखने की इतनी लालसा है, वासना है, तो हम वहां पर दो दो आंख बना दिया। क्योंकि ज्योति कहती है अगर कभी ब्रह्मा से हमारी भेंट हो गई तो मैं उसके चरण पर गिर करके सबसे पहले तो हम की ब्रह्मा दी, हमको कोटि कोटि आंख दीजिए, विषाम प्रियतम के सौंदर्य को देख सके, और किसी भी आंख पर पलक मत बनाए। मोर यदि बोल भरे कोटि आंख काल कर, इसे चैतन्य चेतन अपने गोपियां कहते हैं कि यदि ब्रह्मा जी हमारी बात सुनोगे तो हम अपना अपने शरीर में 1 लाख या करोड़ आंख बनवाए। इतनी लालसा गोपियों को होती है भगवान को देखने की, तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वेणु कर्ण तम मगर रंगीत कीर्ति गोपियों दीक्षित विश्व जगमन समयता। श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और उनके गोप सखा उनके विषय में गा रहे हैं, उन्होंने गीत कीर्ति निरंतर उनका जश गाते रहते हैं। उनको देखने के लिए तम श्री कृष्ण को देखने के लिए जिनकी ये सुंदरता है, गोरज गोरज अलपन लगा हुआ है, बांसुरी बजा रहे हैं, सखा सखा गणों की कीर्ति गा रहे हैं, जिनका जिनकी सुंदर हंसी है, जिनकी रुचि चितौन है, ऐसे प्रियतम श्याम सुंदर को देखने के लिए उनकी आंखों में बहुत लालसा दिदृक्षित दृश्य। यहाँ पर देखिए शब्द कैसा प्रयोग कर रहे सुखदेव, ये नहीं कह रहे कि गोपियों को देखने की लालसा थी, आंखों में देखने की लालसा थी, यह कह रहे हैं आंखों में देखने की लालसा थी। लगता है कि आंखें ही करता है, ये कारण नहीं है, कोई साधन नहीं है देखने का, वही करता है, वही लालसा से भरे हुए हैं आंखें। तो देखने की कितनी अधिक लालसा है इसको कहने के लिए सुखदेव कहते हैं विदृक्षित जैसा, आंखों में देखने की बहुत लालसा है। ऐसी गोपियां अभ्यगमन समयता समयता एक साथ मिल करके और कृष्ण के सामने आ गए देखने के लिए। थोड़ी थोड़ी दूर पर किनारे घूंघट डाली हुई थी गोपियां और कुछ सास ससुर या परिवार के लोग थे जो जिनके सामने वे मुख नहीं कर सकते, पर कृष्ण को देखने के लिए निकल आए। लज्जा परिहार के लिए कोई गोपी अकेले नहीं आया, समेता समेता का एक साथ आया था, श्री कृष्ण को देख सके इसके लिए समाज में उतनी गोपियों को कोई क्या कहेगा। फीमेल कोई आते तो वो बोलते क्या इधर आएंगे क्या देख रहे हैं, हो सकता है वो लोग बोलते, लेकिन गोपियां देखने की लालसा से ही समाज में होकर का मतलब अपने समाज में गोपियों का अपना समाज समुदाय उसमें होकर के अभ्यगमन कृष्ण के सामने आ गए और आ करके लज्जा बिल्कुल नहीं रहे गोपियों और समाज को कोई डर नहीं रहा, इतना श्याम सुंदर को देखने की लालसा थी, इतना देख रहे थी लगता था कि वो पी रहे हैं श्री कृष्ण के मुख सुधार को सौंदर्य मुकुंद मुख सारंगी अक्षी भेंगे। उनके नेत्र ऐसे लग रहे थे, सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे भावरे किसी पुष्प के मधु को पी रहे हैं, तो हटाना कभी नहीं हटते। देखा है अपने मधुमक्खियों को पीते हुए, जब पीती हैं तो उस समय अब ऐसे हटाए तभी नहीं हटती, इतना शक्ति होती भारत मधुर। इस तरह से गोपियों की आंखें पी रही है भगवान श्री कृष्ण के मुख सौंदर्य सुधार मधुर को। पीपा मुकुंद मुख सराधन, श्री कृष्ण के मुख मधु को पी रही। अब मुख के लिए कोई विशेषण भी नहीं दिया जा रहा है, मुख कमल मुख पद में विशेषण नहीं दिया जा रहा है। इसका कारण यह है कि बीच में कमल आदि का स्मरण नहीं है, कृष्ण की कृष्ण का मुख ऐसा है कमल ऐसा है, कृष्ण का मुख ही सबसे सुंदर वस्तु है। तो मुख को ही पी रहे, मुख के मधु को पी रहे। मुख का विशेषण नहीं दिया जाना एक और रस का मादकता का सूचक है। कृष्ण के मुख के मधु को पी रहे थे अक्षय भेंगे अपने नेत्र भ्रमरों के द्वारा तापन जह विरह ब्रज जोशित पी रहे थे। ब्रज की नारियां ब्रज की गोपियां कृष्ण के मुख मधु को पी रहे थे। पीने का मतलब इतना लालसा से देख रहे थे, इतना लालसा से देख रहे थे कि लगता था उसे पी रहे थे, पी रहे थे। बहुत आनंद आ रहा था, कोई सरस चीज पीने पर जैसे आनंद आता है और ऐसे व्यक्ति उसे छोड़ना नहीं चाहता। इस तरह से गोपियां पी रहे थे, देख रहे थे कृष्ण को। और उस समय घर का सास क्या कह रही है, ससुर क्या देख रहे हैं, या अपना पति भी, इसका थोड़ा भी अनुसंधान उनको मन गया। ये पीना शब्द बता रहा है, कोई कुछ भी देखे, कोई कुछ भी कर, इसका अनुसंधान ही नहीं है। जब अपनी शुद्धि ही नहीं है, कल्याण की शुद्धि, पति की शुद्धि, तो फिर वो क्या लज्जा कर श्री कृष्ण को देखने लगे। और इस प्रकार उस मधु को पीने के कारण, भगवान के सौंदर्य को पीने के कारण विरहजम अहमी विरहजम तापम जह, जो दीन के समय से कुछ बन रहे थे, तो उनके वियोग से जो उत्पन्न दाह था, हृदय में दुख था, आंखों में जलन थी, श्री कृष्ण नहीं है, वन में चले गए हैं, इससे विरह उत्पन्न है, विरह हुआ, विरह से उत्पन्न ताप दुख। तो वह दुख है भगवान के मुख मधु को पीने से जब समाप्त कर दिन भर जली थी वो ताप खत्म हो गया। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, तब सत्कृति समधिकम में विवेश गोष्ठ, श्री कृष्ण ने उनका सत्कार किया। जैसे वे श्री कृष्ण को देख रहे थे वैसे श्याम सुंदर भी उनको देख रहे थे, वे भी देखे गोपियों के मुख कमल मुख सुधा को पी रहे। भगवान भी कोई लज्जा नहीं किए, न भगवान के कारण सखाओं का कहीं नहीं, वो प्रेम राज्य भाव राज्य, वहां ये सब नियम नहीं चलते हैं। भगवान अपने प्रेमिकाओं गोपियों के मुख को देख रहे हैं और सब्रीर हास विनय जगताना मोक्ष, और लज्जा से युक्त मुस्कान सब्रीर हास विनय, ये स्वागत कर रहे, क्या स्वागत कर रहे हैं, कैसे स्वागत कर रहे हैं गोपियों का, भगवान हंस करके उनके तरफ देखते हैं। अपान मोक्षी तुलसी चेतवन से देख रहे हैं, हंस करके देख रहे हैं, भगवान की हंसी को देखने पर गोपियों की दिन भर की गिरह ज्वाला समाप्त कर रहे हैं। ये सत्कार जो इनके गिरह में दिन भर व्याकुल थी, भगवान उनका स्वागत कर रहे हैं। तब सत्कृति समधिगम में उनके सत्कार को भगवान ने ग्रहण भी किया, ये अर्थ है। गोपियों ने सत्कार किया कृष्ण का, कृष्ण ने सत्कार किया गोपियों का। ये मुख्य श्री कृष्ण का ही ग्रहण किया विवेश गोष्ठ में, समझे श्री कृष्ण ने गोष्ठ में जहाँ गौएं दुही जाती हैं रहती हैं वहां प्रवेश किए, गोष्ठ में गौओं को पहले ठहराने के लिए प्रवेश किए। बहुत से गोप थे, उनकी गौएं थी, तो वहां आने पर अपने अपने घर में जाने लगते हैं गौएं। जो भगवान का भी अपने घर है जहाँ गौएं रुकती हैं, गोष्ठ का गोल गाय स्थ का टिकट पार्किंग नहीं कहीं स्थल जहाँ रुकती है, कांच का घेराव किया रहता है, वहाँ रुकती है, वहाँ दुहान होता है, मशीन को खोल खोल कर खुला रहता है, दुहान जाता है और घास डाला जाता है खाती है, तो गोष्ठ होती है। गोष्ठ में भगवान विवेश प्रवेश किए, तत् सत्कृति समझ गए, उनका स्वागत करके अथवा उनके सत्कार को पा करके गोष्ठ में प्रवेश किए। दोनों तरफ से सत्कार क्या हो रहा है, दोनों के नेत्र आपस में मिलते हैं तो गोपियां भी हंसती हैं आनंद से, सबरी हास बिना लज्जा के साथ हंसी और विनय, विनय का तो नम्र भाव। वो क्या जब अपान दक्षण, जिसमें सबसे बड़ा सत्कार क्या था गोपियों का, भगवान ने अपने तिरछे चित्तों तिरछी चित्तों से गोपियों पर देखा। अब यह विशेषता है भगवान की, प्रत्येक गोपी को ऐसा ही अनुभव हो रहा था कि श्री कृष्ण हमको देख रहे हैं, हमको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, अपना प्रेम व्यक्त कर रहे थे। ये पूर्व रहा भगवान की, भगवान के लीला में पहला बार वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर गोपियों को पूर्व रागों का, दिव्य प्रेम का। इसके पहले गोपियों का वर्णन नहीं आया, ये पहला वर्णन गोचारण के बाद। तो भगवान ने इस तरह से चित्तौड़ से और मंद मुस्कान से श्री गोपी जनों का स्वागत किया, उनके प्रेम का प्रतिदान किया और गोपियों के उस स्नेह भर दृष्टि को चित्तौड़ को उन्होंने स्वीकार किया। समझ ही गमन का अर्थ है कि कोई गोपियों को देख रही है तो उसको पूरा पूरा उसके नेत्र से नेत्र मिला करके मंद मुस्कान के द्वारा उसे सुख देकर के तब विवेश दृष्ट, तब धीरक में प्रवेश की, जहाँ गाय रहती हूँ वहाँ प्रवेश की। श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत तन्मयता के साथ इस लीला का वर्णन कर रहे हैं, बहुत से भक्तों ने कवियों ने इस लीला का वर्णन किया है। एक हिंदी में रसखान नाम के कवि हुए हैं, भक्त हुए हैं, रसखान का अर्थ होता है रस का खजाना, रसखान उनका नाम ही पड़ गया था रसखान, और मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रेम में फंस गए पूरा पूरा। उनका बहुत से पद है, बहुत से पद है, उसमें एक इस साझी लीला का पद है, गोरज विराज भाल लहल ही वन माल, गोरज विराज भाल लहल ही वन माल, आगे गैया पीछे जाल जाने मृदुता नारी, आगे गैया पाछे जाल जाने मृदुता नारी। मुस्कान जी गा रहे हैं गोरज विराजे भाल, भाल मतलब सिर, केश सिर पर गोरज विराज रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, भगवान के मस्तक पर गाय के खुद का रज भी बहुत सुंदर लग रहा है। गोरज विराजे भाल लहल लहे बनमाल, तुरंत की पहनाई हुई खिली हुई बनमाला बहुत सुंदर लग रहा है, बनमाला पर भी धूल लगी हुई है, भगवान के और भी पिताला लगाने पर धूल लगी हुई है, फिर भी बनमाला बहुत सुंदर लग रहा है। लहल लहे बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदु तान, गौएं आगे चल रही हैं और गोप सब गौओं के पीछे हैं और गोप सब गा रहे हैं, गाय मृदु तान, ऐसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर वैसे कुंडल झलक मन मन मुस्कान। हमको थोड़ा सा कम याद हो रहा, और जैसे गा रहे हैं बच्चे गोप सखा वैसे श्री कृष्ण भी मधुर मधुर बांसुरी बजाते चल रहे हैं, उनके कानों के कुंडल झलक रहे हैं और देखो सखी कितना सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। ये सखी का उद्गार है रसखाने जी की भाषा में, भाव सखियों का है, गोपियों का भाषा रसखाने जी की, दशे श्लोक यही है। मैं इसको थोड़ा कुछ पूछना हूँ।
गोरज विराज
सखी देखो कैसी उनकी दृष्टि है। बंक चित्त वाली टेढ़ी नजर टेढ़ी तिरछी से तिरछी चित्तों से देख रहे हैं और नंद मृदु मुस्कानी है।
कदम भी तक के नी कच तक के आया कदम भी तक के नी कच तक के आया आता चढ़े चाहे सीता
ये सखी देखो 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 वे जमुना जी के किनारे कदम वृक्ष के पास आ गए हैं जहाँ श्री कृष्ण गौओं को हिदराते थे अलग अलग करते थे सखाओं के। तो देखो उस प्रसिद्ध कदम वृक्ष के पास आए आ गए हैं। कदम वृक्ष के निकट तटनी के आए तटनी मतलब जमुना जी जमुना जी के किनारे आ गए हैं। अटा चाहे चाहे तीर्थपट फहरा लगे अटा मैंने अटारी पर चढ़ करके चाहे मैंने देखो भाषा में चाहे मैंने देखो तीर्थपट फहरा लगे। देखो कितना सुंदर पीतांबर फहरा रहा है कृष्ण का दुपट्टा फहरा रहा है बहुत सुंदर।
रस सारे
तो है ही रसो वैसा रस के खाना रस बरसावे तन तपन बुझावे। देखो नितम श्याम सुंदर आ रहे हैं रस बरसा रहे हैं गान द्वारा अपने तिरछी चितवन द्वारा मुस्कान द्वारा रस बरसावे। जैसे बादल बरसता है और गर्मी के दिन की ताप मिट जाता है बरसात के दिन ऐसे रस बरसा रहे हैं। तन तपन बुझावे शरीर का ताप चला जा रहा है दुख चला जा रहा है। नैन प्राणनी बुझावे ने हमारे नेत्र और प्राणों को शीतल कर रहे हैं सुखी कर रहे हैं। नैन प्राणनी बुझावे वह आवे रस खाने दे। देखो रस खाने आ रहा है कृष्ण आ रहा है इस तरह रस खाने दिन गाया है। भरतेंदु हरिश्चंद्र भी पर्व लिखे हैं इस पर इस संध्या मिला पर वो कहते हैं
साज समय साज साज बाल बाल साथ लिए साज समय बाल बाल साथ लिए मोहन मोहन ही हरि आवत हरि मोहन मोहन ही हरि
करता हूं। गोपियां कह रहे हैं आपस में अपने सखियों से हे सखी सांझ समय साजे साथ ग्वाल बाल साथ लिए। सांझ के समय वन के पदार्थों से फूल से माला से मृग पक्ष से साज सज करके और श्री कृष्ण ग्वाल बालों को साथ लेकर के आ रहे हैं। सांझे समय साजे साथ बार बार साथ लिए मोहन मन ही हरि आवत हरु हर। मोहन श्री कृष्ण मन ही हरि मन को हरते हुए परम सुंदर लगते हैं, मन को हरते हुए हरु हरु जल्दी जल्दी आ रहे हैं, हल्दी हल्दी आ रहे हैं। मैं एक बार इसका आप धीरे धीरे कर दिया था लेकिन ऊंचा था, हरु हरु जल्दी जल्दी आ रहे हैं। देखो मोहन मन को हरते हुए हरु हरु हल्दी हल्दी जल्दी जल्दी आ रहे हैं। मोहन मन ही सिर पर मोर मुकुट है, सिर मोर मुकुट लकुट कर ली है और छड़ी गाय चराने के लिए लकुट अपने हाथ में लिए हैं और ओहे उपरायण है जैसे टको चारो गोकर और पीतांबर ओहे हैं जिसमें जरी की गई है सोने की गोखर टाके गए ओ पीता देखो बांसुरी बजा रहे हैं वो गा रहे हैं और गाय और बछड़ी गौ और बछड़ों को साथ में लिए लिए आ रहे हैं। हरे चंद्र बीच में श्याम सुंदर नाच रहे हैं। नाचक तो गुआल मध्य लाजक तो मनोज लखी और साक्षात कामदेव भी कृष्ण को देख करके लज्जित हो रहा है। कोटि कंदर पर विशेष शोभम भगवान है कृष्ण है और आवक तो गोपाल नाचक तो गुआल मध्य नाचक तो गोपाल ग्वाल मध्य लाजक तो मनोज लखी आवे सखी बाजक तो गोपाल पान घूम। देखो गोपाल आ रहे हैं, श्याम सुंदर कृष्ण आ रहे हैं और उनके चरणों में नुपुर बजाय घुंघरू बज रहा है। इस तरह भक्त मंदिर कह रहा है नाचत ग्वाल मध्य लाजक मनोज लखी नाचत ग्वाल मध्य लाज कर्म मज लखी
सखी आवे सखी राज कर गोपाल पाए झुमरे आवे सखी राज कर गोपाल पाए झुमरे।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के साझे लीला का बहुत से महापुरुषों ने वर्णन किया है, क्योंकि गोपियों के लिए यही सबसे बड़ा आनंद का समय होता है जब श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखती थी, मिलती थी। और माँ यशोदा के लिए भी यही सबसे आनंद का समय होता है। दिन में माँ यशोदा चिंता में रहती थी, बच्चे गए हैं गाय चराने के लिए, पिता क्या होगा, चिंता बहुत रहती थी। और गोपियों को पैसा लगता था उनका प्राण ही बदल चला गया है, एक एक क्षण बहुत बहुत युग के समान बीत रहा है। श्री कृष्ण इस प्रकार ब्रज में रोज लीला करते हैं। उनका ब्रज से वन में जाना, वन में विदुर विहार करना और वन से पुनः ब्रज की ओर लौटना तो आनंद घन है। सब समय आनंद लुटाते रहते हैं। उनका देखना, उनका हंसना, उनका चलना, उनका बोलना सब कुछ आनंदमय है, सब कुछ आनंदमय है। श्री सुखदेव गोस्वामी भी बहुत तन्मयता के साथ भगवान की लीला का वर्णन कर रहे हैं। और महाराज परीक्षित की सभा में गंगा जी के तट पर सभी ऋषि मुनि बिल्कुल तन्मय होकर के इस लीला को सुन रहे हैं। ये कम श्लोकों में लीला है, लेकिन इसमें सब कुछ कह दिया गया, सब कुछ कह दिया गया। इसकी व्याख्या बहुत हो सकती है। उनको एक पद दिया जा रहा है, इस पद
ऐसो चटक नटक को ठाकुर तीनों लोक नहीं
चटक मटक हम इतना सुंदर और इतना कृपालु और इतना सुलभ, ऐसा कोई भी इष्ट देव नहीं है तीनों लोकों में, कोई ऐसा नहीं है। उनको याद नहीं है, किसी को याद है? इसको याद है क्या पहला पद है? हाँ,
तीन ठौर ते टेढ़ोदी है, तीन ठौर ते टेढ़ोदी है।
ऐसा ठाकुर है तीन जगह से चेहरा रहता है, त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़ा रहता है ना। हम देखे इस काम में किसी भी सेंटर पर कभी भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ हैं तो तीन जगह से चेहरे हैं, पैर चेहरा है और कमर चेहरी और हाथ भी हो सकती है मछली बोल।
तीन ठौर ते टेढ़ो दीख है, तेरी है तलाब दीख
है। नट सो
नट की सी चल गति है,
नट की सी यह चल गति सीख है,
नट की सी यह
तेरो सैन चलावे पीठ है,
तेरो सैन चलावे पीठ
है। हमेशा पीछे देखता है, देखता है तो बाण जैसा मारता है, ऐसा ठाकुर है।
तेरो सैन चलावे पीठ है, तेरो सैन चलावे
देवन को यह देव तुए ब्रज में घेरे लेकिन ब्रज में इसको गाय चलाना पड़ रहा है। देवन को यह देव तरु यह ब्रज में
देवन को यह
ब्रह्मा मोह कियो पछतायो गर्व इंद्र को दूर भगायो गर्व इंद्र को दूर भगायो दर्शन को शिव ब्रज में आयो दर्शन को शिव और शिव जी भी दर्शन के लिए इतना वैभव है इतना ऐश्वर्य है कृष्ण का, फिर भी ब्रज में गाड़ी खा ब्रज में रोज उसको गाड़ी दिया जाता है। मक्खन चोर कहा जाता है, गोपियां मंकट कहती हैं, इस तरह से रोज गाड़ी खाता है। ऐसो वैभव
गिरिवर धारो सात दिना तक
ब्रज में, जैसे अघासुर, बकासुर, त्रिणावर्त, धेनु, अरिष्टासुर, बहुत से असुरों को मारा, बड़े बड़े असुर, कुलेपीर को मारा, कंस को मारा, सब कुछ। ये तो मथुरा में मारा, लेकिन ब्रज में भी बहुत से असुरों को मारा, बड़े बड़े असुरों को मारा। नाग कालिया पकड़ पछाड़, काली नाग जैसे भयानक सर्प को पकड़ करके उसे पटक दिए, पछाड़ दिए, हरा दिए। और 7 दिन तक गिरवर था, 7 दिन पहाड़ उठा लिए, ऐसा एक भगवान। लेकिन खेलने में ऐसो बली तरु ग्वालन पे खेलने में पिट जाए, भक्तों गोपों के साथ खेलने में हार जाते हैं। और इतना इतना बड़ा काम किए, लेकिन इतनो बली तरु खेलन में खेलन में पिट जाए, पिट जाए हार जाते, हरा देते हैं, इतने बली ही करो। इतनो बली तरु सुंदर और प्रेमी बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए ही घर घर में डोलते हैं। दूसरे देवता बुलाने के बाद भी कहीं नहीं आते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, अरे बिना बुलाए इतना बड़ा ईश्वर घर घर में डोलता है। और प्रेमी ब्रज गोपियों को चाहकर और गोपियों का यह नौकर बना घूमता है, कहीं नृत्य करता है, कहीं गोबर उठवाता है, कुछ करता है, गाय की सेवा करता है। प्रेमी ब्रज गोपिन को चाहता और लास्ट में क्या है था?
हाँ, इतना प्रेम बंधा है इसका, इतना प्रेम बंधा है माखन से कि चोरी कर दे जाए, इतना प्रेम कौन गाएंगे, क्या गाएंगे पहले बता दीजिए।
Thank you.
समझ में नहीं आया होगा तो उसका अर्थ किया जा रहा है कि दगनोगी दगनी धरनी छल ही के बाद कोई सखी कह रही है अपनी सखियों से कि हे सखी देखो श्री कृष्ण आ रहे थे कल आ रहे थे गाय चरा करके तो बहुत दगमग पैर पड़ रहा था उनका नाचते हुए चल रहे थे क्यों ऐसे डगमग चरण पर आते क्योंकि शोभा का भार वे सह नहीं पाते इतना वजन है शोभा का ब्यूटी का कृष्ण पर कि इसके कारण डगमग चलते दगन धरणी छवि ही के भार छवि के भार से ऐसे चलते और धरणी छवि आशी बनमाल की और उनकी बनमाला धर रही है लटकी हुई है तो बहुत अच्छी लग रही है उनके सुंदर वक्षस्थल पर माला लटकी हुई है बहुत सुंदर लग रही है गोपी वर्णन कर रही है और आगे सुंदर बदन पर कोटि का मदन वाल इतना सुंदर बदन है उनका मुख है उस पर करोड़ों करोड़ों कांधे उन्हें शार्प हो जाएगा चित चूभी चित्तों लोचन विशाल की और उनके विशाल लोचन बड़ी बड़ी आंखों की जो चितवन है वो तो चुभ गई है हृदय चित्त चुभी चित्तन अमी लोचन विशाल की काली ही गली निकसे औचक कराए कहा तमाचक भटकते काल की हरी सखी काल इसी गली से गाय खोजते हुए तो बहाना था उनका गाय खोजने का पूछते थे गाय हमारी इधर गई उधर गई हो गोपी से बात करना चाहते थे दर्शन देना चाहते थे काली ही गली अली निकसे औचक आया काल इसी गली में अकस्मात आ गए और कहा कहा अटक भटक थी कहा उस समय में तो चकित हो गई मैं उस अटक भटक को आनंद को और भय को ही मैं क्या कहूँ कोई देख न ले कि किसी से बात कर रही है देख रही है अकस्मात आ गए और हमसे पूछे कि हमारी गाय इधर गई है वो तो केवल बात करना चाहते थे कहा कहो अटक भटक थे काल की मैं मुझे तो अजीब आश्चर्य हो गया मैं क्या करूँ क्या न बोलू क्या बोलू इसे कहा कहूँ और मैं उसी समय से जब से कृष्ण की आमनी देखी हूँ वन से आते हुए तो भिजई हूँ आनंद के भिजई हूँ रोम रोम आनंद के घन छा ऐसा लगा कि श्री कृष्ण आनंद के बादल है और मेरा रोम रोम भीग गया किससे आनंद से भीग गया बसी मेरी आँखें में आमनी गोपाल की मेरे आँख में कृष्ण की वही वन से आमनी बसी हुई है किस तरह से आ रहे यही बसी हुई है मैं वही केवल देखती रहती हूँ बसी मेरी आँखें में आमनी गोपाल की बहुत सुंदर पद है आनंद घन जी का पद है घनानंद जी का यही ब्रजभाषा के महान भक्त और कवि हुए हैं उनका पद बहुत प्रसिद्ध है हरे कृष्ण तो समय हो गया हरे कृष्ण जय श्री राम भगवान श्री कृष्ण और बलराम की माँ यशोदा रोहिणी के पास पहुंच गए उन्होंने खिलाया पिलाया उसको पंडित स्नान कराया सार समझाया इसके बाद कृष्ण बलराम सो गए कथा का विश्राम यहाँ करना चाहिए हरे कृष्ण।